नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
बीजेपी का मजबूत किला माने जाने वाले गुजरात में हुए निकाय चुनाव में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में जहां बीजेपी ने एक बार फिर परचम लहराया, वहीं सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने पहली बार कई सीटों पर कामयाबी हासिल की है। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जिसके लिए ये नतीजे टेंशन देने वाले हैं, वो भी तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव बस लगभग 1.5 साल दूर हैं। अजय उमर जी, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने अपना खाता खोल दिया गुजरात में, पर वहां के पिछले असेंबली इलेक्शंस में अच्छी खासी टक्कर देने वाली कांग्रेस निकाय चुनाव में इतनी कमजोर कैसे पड़ गई?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि असेंबली इलेक्शंस के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद गुजरात पार्टी में इंटरनल बिकरिंग्स, जिसे कहते हैं आंतरिक जुटबंदी, गुटबंदी जो थी वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। और अहमद भाई पटेल के निधन के बाद ये गुटबंदी और ज्यादा बढ़ गई। एक तो शंकर सिंह वाघेला जी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। पिछली बार आपने देखा होगा जब अमित भाई वर्सेस अहमद भाई पटेल का चुनाव हुआ था, तब करीब 15 जितने कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी को छोड़ दी थी। और उसके अभी करीब एक साल पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें 8 और कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो कांग्रेस मुक्त भाजपा की जगह हो गया है कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है गुजरात में। और भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा फायदा उठाया है, जैसे कोली वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है। पिछली बार आपने देखा होगा तो हार्दिक पटेल 2015 के जो चुनाव थे उसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाली और अल्पेश ठाकुर, ये तीन जो थे हीरो, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हुआ था। इस बार हुआ ये है कि अल्पेश ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, जिग्नेश मेवाली थोड़े इनएक्टिव हैं, और हार्दिक पटेल जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक्टिंग पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था उनका कहीं भी कोई भी इस्तेमाल इस इलेक्शन में पार्टी ने नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि पार्टी को सूरत, जहां सबसे ज्यादा जीरो परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है और जहां आम आदमी पार्टी आ गई है, वो हुआ ये है कि पटेल आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे, जो सौराष्ट्र के पाटीदार लोग थे, पटेल लोग थे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ लिया है। और ये नतीजों से दिख रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी के 27 कैंडिडेट जीते हैं जबकि कांग्रेस का बिग जीरो है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने पटेल वोट को अपने खेमे में ले आए हैं और हार्दिक पटेल जो है उनको कांग्रेस पार्टी ने यूज नहीं किया। और ये हार्दिक पटेल की भी फेलियर है और कांग्रेस पार्टी की भी फेलियर है।
जी, सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं। यहाँ के पाटीदार आंदोलन का केंद्र माना जाता है सूरत, और हार्दिक पटेल और हार्दिक पटेल के नेतृत्व में लड़ने वाली कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो गया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती है। तो सूरत में कांग्रेस का ये हाल कैसे और क्यों हुआ और आम आदमी पार्टी ने कैसे जगह बनाई यहाँ अपनी?
देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले एक साल से गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, ये जो दो अर्बन सेंटर थे उसमें दिल्ली मॉडल को लेके काफी प्रचार कर रही थी, लेकिन सूरत में उनको लगा कि जमीन जो थी, जमीनी काफी फर्टाइल लैंड उनको सूरत में प्राप्त हुई, क्योंकि पाटीदार आंदोलन से जो असंतुष्ट नेता थे, जो हार्दिक पटेल से भी असंतुष्ट हो चुके थे, और हार्दिक पटेल ने भी फिर ये स्वीकार कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी उनको कोई सपोर्ट नहीं दे रही है। तो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इन लोगों को टिकट नहीं मिली और आम आदमी पार्टी ने इन सब लोगों को टिकट दे दी। उसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा तबका है जो सौराष्ट्र के पटेलों के साथ जुड़ा हुआ है, जो डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को काफी साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल वहां पर आए। और सूरत एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ गुजराती नहीं रहते हैं, वहां पर काफी अग्रवाल लोग, जैसे हम कहते हैं मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग, जो केजरीवाल की पार्टी के भी लोग हैं, सो उन्होंने भी काफी कुछ सपोर्ट दिया। और सूरत एक ऐसा एपिसेंटर है जहां पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। आपको पता होगा कि मोरारजी देसाई जब इंदिरा गांधी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो सूरत की सीट से ही चुनाव जीते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा टक्कर जो थी गुजरात में वो सूरत से मिली थी, जहां मोरारजी देसाई वहां से चुनाव जीतते थे। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है उसका एपिसेंटर हमेशा सूरत रहता है, और कोई भी एजिटेशन जो गुजरात में या नेशनल लेवल पे आता है वो सूरत से शुरू होता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक शुभ संकेत है कि उनको सूरत से अच्छा सपोर्ट मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती है कि वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग थी, प्राइस राइज थे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन भी है, उसका भी वो लोग फायदा उठा सकते थे, कोरोना की स्थिति थी, सबसे ज्यादा माइग्रेशन सूरत से हुआ था, क्योंकि सूरत एक ऐसी प्लेस थी कि जहां से बिहारी, उड़िया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लेबरर्स वहां से काफी माइग्रेट हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा सकी, जबकि आम आदमी पार्टी ने उसका फायदा उठाया।
तो अब जब विधानसभा चुनाव लगभग 1.5 साल दूर हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास वापसी के लिए या खुद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए क्या विकल्प बचा है, उसे क्या करना होगा कि विधानसभा चुनाव में वो फिर से टक्कर में उतर पाए?
एक तो नेतृत्व सुधारना पड़ेगा, दूसरा चुनाव जीतने की नीयत बनानी पड़ेगी, और तीसरी उनकी नीति जो है काफी साफ होनी चाहिए। अभी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी खिचड़ी हो गई है। एक तो कोई सेंट्रल लीडरशिप से सपोर्ट नहीं है, चुनाव में कोई सेंट्रल लीडर्स जो थे यहाँ कैंपेन करने के लिए भी नहीं आए। आप देखिए कि अगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, स्मृति ईरानी से लेके मनसुख भाई मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला, अमित भाई शाह जैसे लोगों ने गुजरात चुनाव में कैंपेनिंग भी किया और मॉनिटरिंग भी की, और हर एक कॉरपोरेशन का एक वार्ड था उसका माइक्रो माइक्रो प्लानिंग किया गया था, पेज मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके सब कुछ, हर एक को जिम्मेदारी, मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमएलए को, एमपी को, मतलब काफी परफेक्ट पेज मैनेजमेंट किया गया था। जितना अच्छा पेज मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया था, उतना ही अच्छा मॉडल एक प्रोफेशनल एजेंसी की मदद से पूरे गुजरात में किया गया था, और काफी इफेक्टिव लीडरशिप भी गुजरात में रूपाणी ने, सीआर पाटिल ने दी, जबकि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबंदी इतनी हावी हो गई थी कि कोई पार्टी प्रेसिडेंट की कोई औकात ही नहीं रह गई थी कि वो कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखे। वो पार्टी ऑफिस से टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी, फार्म हाउस से मैंडेट दिए जाते थे, इतनी खराब स्थिति थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो डैमेज कंट्रोल करने की क्षमता अहमद भाई पटेल के वक्त में थी कि वो पार्टी में डैमेज कंट्रोल भी करते थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही करते थे, कोई माई बाप ही नहीं रहा कांग्रेस पार्टी का। तो इस स्थिति में कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि हालत बद से बदतर हो रही है।
अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होता आया है चुनाव में, पर क्या ऐसा लगता है कि जहां जहां बीजेपी के मुकाबले अकेली कांग्रेस ना होकर त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं, वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर पिछड़ने लगी है और एक तीसरी पार्टी तेजी से जगह बनाने लगी है, क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए?
ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता और चिंतन दोनों की बात है। आप देखिए कि गुजरात में अभी तक सिर्फ टू पार्टी डोमिनेंस था, अभी चतुष्कोणीय जंग हो गया है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, चौथी तरफ ओबीसी की पार्टी जो है AIMMM, उसने भी पैक बनाने की कोशिश की है। अहमदाबाद में आप देखिए कि जमालपुर इलाका है, उसमें AIMMM की पूरी पैनल जीत गई है। इतना ही नहीं, NCP और BSP भी कुछ जगह पॉकेट्स में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ वोट जो हो रहा है, जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग बीजेपी के सामने है, वो वोट का पोलराइजेशन कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, मुस्लिम इलाके में कांग्रेस और AIMMM में, और दलित विस्तार में बहुजन समाज पार्टी और NCP के फेवर में जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस की वोट बैंक है वो बट रही है, जबकि बीजेपी की वोट बैंक जो विचारधारा से, हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रही है। उसका भी एक एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है।
जी अजय उमर जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।